मेरे बहुत बहुत प्यारे साथियों, आप सभी को डॉक्टर विजय अग्रवाल का बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज 21 जनवरी 2019 है और आज के इस afeis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं और बहुत बहुत हार्दिक रूप से अभिनंदन भी करता हूं। और आप सबके साथ ही मैं विशेष रूप से स्वागत करता हूं अपने उन चार नौजवान साथियों का जिन्होंने एकेडमी की 3 से 17 मार्च के बीच होने वाली क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन दोस्तों के नाम हैं कुलदीप कुमार, आप करवी चित्रकूट उत्तर प्रदेश से हैं। गंगा कुमार मुखिया, आपका गांव है करीहो जिला सुपौल बिहार से हैं। डिंपल दामोर, आपका गांव है लिमड़ी जिला दाहोद गुजरात से हैं। और विशाल कुमार मिश्र, आपका गांव है धूस जिला बलरामपुर उत्तर प्रदेश से हैं। तो कुलदीप, गंगा, डिंपल और विशाल, आप चारों मित्रों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों, मुझे यकीन है कि बीच के ये 2 दिन जिन्हें मैं छुट्टी के दिन कहता हूं या ऊर्जा की पुनर्प्राप्ति का दिन कहना ज्यादा पसंद करता हूं, आपके बड़े अच्छे तरीके से बीते होंगे और आप नई ऊर्जा के साथ अब आने वाले 5 दिनों का उपयोग करने के लिए पूरी मुस्तैदी के साथ तैयार हो चुके होंगे। फ्रेंड्स, मैंने सोचा कि आज मुझे सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की इनफैक्ट क्या चुनौतियां हैं, क्या चैलेंजेस हैं, इसके बारे में विशेष रूप से बात करनी चाहिए। दरअसल इसके पीछे भी बहुत स्पष्ट कारण है। जैसा कि आप सबको मालूम है कि अभी जब मैं दिल्ली गया था तो वर्ल्ड बुक फेयर में रामजस कॉलेज में स्टूडेंट से सीधे बातचीत हुई, काफी बातचीत हुई। और खासकर वर्ल्ड बुक फेयर में तो लगातार दिन भर बातचीत होती रहती थी क्योंकि स्टूडेंट आते रहते थे और अपनी समस्याएं बताते रहते थे। मुझे लगा कि जो सबसे बड़ी समस्या जो स्टूडेंट की है शायद वह यह है, मैं शायद शब्द कहना चाहूंगा क्योंकि सब अपने अपने ढंग से अपनी अपनी समस्याओं को देखने के लिए स्वतंत्र हैं, अनुभव भी करते हैं। आप जब दूसरों से गाइडेंस लेते हैं तो आपकी समस्याओं को अपने अपने ढंग से वो आइडेंटिफाई करके उसे दूर करने की कोशिश भी करते हैं। इसी तरह से मैं अपने ढंग से कर रहा हूं, इसीलिए मुझे शायद शब्द का ही इस्तेमाल करना चाहिए। जो सबसे बड़ी समस्या है वो ये है कि वो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन को बेसिकली एक टैलेंट का एग्जाम मान लेते हैं। और टैलेंट का एग्जाम अगर वो माने वहां तक तो बात ठीक है, लेकिन वो टैलेंट की परिभाषा फिर बड़े अलग तरीके से करने लगते हैं। जब टैलेंट की बात आती है तो उसमें जो उनको जो परिभाषित करते हैं वो होता है कि कितने घंटे पढ़ें, कौन कौन सी किताबें पढ़ें, ज्यादा से ज्यादा किताबें पढ़ें, मतलब सारा जोर उनके पढ़ने पर हो जाता है। वर्ल्ड बुक फेयर में ही मुझे एक घटना याद है, अभी की बुक फेयर में मैं प्रभात प्रकाशन के जब स्टॉल पर गया तो मैंने देखा कि वहां निशांत जैन बैठे हुए थे। मेरी मुलाकात हुई, उनके कहने पर, बहुत अनुरोध करने पर मुझे भी उनके साथ बैठना पड़ा। हालांकि मुझे बड़ा संकोच हो रहा था कि ये फोरम है वो निशांत जैन जी का है और मुझे वहां नहीं बैठना चाहिए, लेकिन ठीक है, मैं भी वहां बैठ गया। तो वहां स्टूडेंट, तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स, अब निशांत जैन है और उनसे वो प्रश्न कर रहे हैं। देखिए, तो जो प्रश्न किए जा रहे थे उनसे वो इसी तरह के प्रश्न किए जा रहे थे कि सर आप कितने घंटे पढ़ते थे, आप सुबह पढ़ते थे या शाम को पढ़ते थे, आप तो आपने नौकरी की थी तो सिविल सर्विस की तैयारी के लिए आपने कितने दिनों की छुट्टियां ली, इस तरह की बातें हो रही थी। कौन कौन सी आप किताबें पढ़ते थे, नोट्स कैसे बनाते थे, इस तरह के प्रश्न उनसे पूछे जा रहे थे। जबकि मुझे लगता है कि प्रश्न पूछे जाने के लिए बहुत सॉलिड क्वेश्चंस थे। सवाल ये नहीं है कि हम कितने घंटे पढ़ते हैं, कौन कौन सी किताबें पढ़ते हैं, हम छुट्टियां कैसे लेते हैं, हम टाइम कैसे मैनेज करते हैं। मित्रों, याद रखिए कि ये सब आपकी अपनी परिस्थितियों पर डिपेंड करता है। हम सबकी क्षमताएं अलग अलग हैं, हम सबकी परिस्थितियां अलग अलग हैं। और सच पूछिए तो जब हम सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं तो हम सबकी रिक्वायरमेंट्स भी अलग अलग हैं। हो सकता है कि आप ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में एक ऐसा विषय ले रहे हैं जिसमें आपने एमए किया हो तो आपकी परिस्थिति बिल्कुल अलग हो गई। आप इंजीनियरिंग से जब आते हैं तो जनरल स्टडीज की तैयारी के लिए आपको बहुत ज्यादा समय चाहिए, और अगर ऑप्शनल आपने ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट का ले लिया तो और ज्यादा समय चाहिए। फिर अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो टाइम मैनेजमेंट बिल्कुल अलग तरीके से होगा, और अगर आप सिर्फ तैयारी कर रहे हैं तो टाइम मैनेजमेंट बिल्कुल अलग तरीके से होगा, अगर आप कोचिंग के साथ तैयारी कर रहे हैं तो टाइम मैनेजमेंट बिल्कुल अलग तरीके से होगा। तो किसी एक व्यक्ति का जो टाइम मैनेजमेंट का तरीका है वो सभी व्यक्तियों पर, मित्रों, कैसे लागू हो सकता है, ये बात आप समझिए। और समझाने की बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब हमारा दिमाग इन सब चीजों के बारे में ही सोचता है और इन्हीं सभी इसी तरह के प्रश्नों के उत्तर ढूंढता है तो इसका नतीजा क्या होता है, इसका जो खतरनाक पक्ष है, खतरनाक नतीजा है, वो ये है कि मूल बातों से हम भटक करके और परिधि में चले जाते हैं, पेरिफेरी में चले जाते हैं, यानी कि जो जानना चाहिए वो हमारे हाथों से छूट जाता है और जो नहीं जानने चाहिए हम उनमें उलझ जाते हैं। फ्रेंड्स, इसे प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, आप सबके आंखों में एक सपना है और ये जो सपना है ये सिर्फ आपका है, अपना ही सपना नहीं है, आपके माता पिता का सपना, आपके अभिभावकों का सपना, आपके परिवार के सदस्यों का सपना, आपके शुभचिंतकों का सपना, आपके गांव और शहर का सपना, पता नहीं आपके सपनों में कितने लोगों के सपने शामिल हैं। और उतने सारे सपनों का बोझ अपनी आंखों पर पाले हुए आप तैयारी कर रहे हैं। तो रियल चैलेंजेस को समझिए कि सिविल सर्विस की जो चुनौतियां हैं वस्तुतः वे हैं क्या, क्योंकि जब तक आप चुनौतियों को सही तरीके से आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे तब तक आप उनका मुकाबला कैसे करेंगे। तो दोस्तों, मैं कुछ चुनौतियों के बारे में आपसे बात करने जा रहा हूं, और यदि वो बात हमारी आज पूरी नहीं हो पाई तो डेफिनेटली हम लोग आगे भी इस पर कुछ न कुछ बातें करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, चुनौती इस बात की बिल्कुल नहीं है कि आप कितने घंटे पढ़ते हैं, चुनौती इस बात की नहीं है कि आप कौन कौन सी किताबें पढ़ते हैं, इसकी जो चुनौतियां हैं इनफैक्ट बहुत ही अदृश्य किस्म की चुनौतियां हैं, एक अदृश्य इनविजिबल चैलेंजेस जो आपको दिखाई नहीं देते। ऐसा नहीं है कि दिखाई नहीं देते तो कोई भूत प्रेत जैसा मामला है, वो चीजें आपके सामने हैं, जो चुनौतियां हैं वो आपके सामने हैं, लेकिन स्पष्ट रूप से लिखित रूप में नहीं है कि वो लिखित रूप में होगी, देखिए ये चैलेंजेस हैं, नॉट एट ऑल। यूपीएससी बट नेचुरल है कि आपके सामने कुछ चैलेंजेस पेश करती है, और याद रखिए कि इन चैलेंजेस में सिलेबस तो कम से कम चैलेंज नहीं है, ज्यादातर स्टूडेंट ये मानकर चलते हैं कि सिलेबस बहुत ज्यादा है। आप एक काम कीजिए, देखिए अगर हिंदुस्तान की सबसे कठिन परीक्षा अगर आप मानते हैं तो कुछ तो उसके स्तर पर होना ही चाहिए, लेकिन चलिए मैं इस बात को भी छोड़ता हूं। आप एक काम कर करिए कि आप 3 साल में बीए करते हैं, आप 2 साल में पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, आप 2 साल का सिलेबस एक साथ ऐड कर दीजिए पोस्ट ग्रेजुएशन का, और ग्रेजुएशन के 3 साल के सिलेबस को एक साथ ऐड कर दीजिए, और दोनों को अलग अलग रख दीजिए कि ये ग्रेजुएशन का टोटल सिलेबस और ये एमए का टोटल सिलेबस, और इसके बाद उन दोनों सिलेबस से अलग अलग आप अपने सिविल सर्विस के सिलेबस की तुलना कीजिए और देखिए कि किसका सिलेबस ज्यादा है। आपको लगेगा कि नहीं, जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का सिलेबस है ये इन दोनों की तुलना में कम है। पहली बात, सिलेबस तो चैलेंज फिर है ही नहीं, तो फिर चैलेंज है क्या? टॉपिक पर आप जाइए तो आपको कोई बहुत उसमें अनजाना टॉपिक नहीं मिलेगा कि कोई रॉकेट साइंस आपको पढ़ना है। जनरल स्टडीज के जो पेपर्स हैं या जो निबंध के जो क्वेश्चन जो जिन पर आपको निबंध लिखने के लिए कहा जाता है, आप उनके टॉपिक उठा करके देख लीजिए, जनरल स्टडीज के आप क्वेश्चंस उठा करके देख लीजिए, आपको जाने पहचाने से ही लगते होंगे। ठीक है, जनरल स्टडीज का कोई प्रश्न आपको अनजाना सा लग सकता है, लेकिन ज्यादातर आपको लगता है कि यार ये तो जाने पहचाने से है, हाँ ये तो मैंने पढ़ा था। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो आप बताइए। जहां तक ऑप्शनल पेपर का सवाल है, डेफिनेटली ऑप्शनल पेपर का लेवल थोड़ा सा हाई होता है, लेकिन वो भी कोई पोस्ट ग्रेजुएशन से ऊपर का नहीं होता है, उसके लिए भी बकायदे दिया गया है कि वो ऑनर्स की डिग्री का होगा। तो फिर सिलेबस चैलेंज हुआ कहां से, आप सोच करके देखिए। तो फिर चैलेंज है क्या? मित्रों, चैलेंज को सही मायने में जानने के लिए, अगर आप सही में आप चैलेंज को समझना चाहते हैं तो आप थोड़ा सा एक काम कीजिए, मैं आपको माफ कीजिएगा एक एक्सरसाइज दे रहा हूं। आप कोई भी टॉपिक पढ़िए, एक टॉपिक पढ़िए, और बल्कि पहले से ही छांट लीजिए, चयन कर लीजिए कि उस टॉपिक पर सिविल सर्विस एक्ट में पूछा गया हो। 2018 का एग्जाम हो चुका है, आप उसको उसमें से 4 पेपर हैं, किसी भी एक पेपर का कोई भी एक प्रश्न उठा लीजिए और जो प्रश्न पूछा गया है उसी टॉपिक को पढ़िए। प्लीज कीजिए, तब आपको वो जो इनविजिबल जो चैलेंज है वो दिखाई देगा। आप उसे पढ़िए और पढ़ने के बाद अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए, तैयार भी अच्छे से कर लीजिए, फिर आप आंसर लिखिए। देखिए, आपने पहले से प्रश्न पढ़ लिया है, इसके बाद आप टॉपिक की तैयारी कर रहे हैं, आपने टॉपिक की तैयारी कर ली है, अब आपको आंसर लिखना है। अब आप देखिए कि जब आप आंसर लिख रहे हैं तो आंसर लिखने में आपको क्या दिक्कतें आ रही हैं, क्या दिक्कतें आ रही हैं, और उसको बड़ी संवेदना के स्तर पर महसूस करने की कोशिश कीजिए। कैसी कैसी दिक्कतें आ सकती हैं, शुरू कहां से करूं, यह दिक्कत आ सकती है। निष्कर्ष क्या दूं, यह दिक्कत आ सकती है, क्योंकि शब्द की सीमा है और शब्द की सीमा का आपको पालन इसलिए भी करना पड़ेगा कि आपको 3 घंटे में 20 क्वेश्चंस करने हैं, 180 मिनट्स में 20 क्वेश्चन, पर क्वेश्चन मात्र 9 मिनट्स, और उसमें भी पूरे 9 मिनट्स आप नहीं दे सकते। एक बार आप पूरा क्वेश्चन पेपर पढ़ते हैं, फिर एक प्रश्न जब पूरा हो जाता है तो फिर दूसरे प्रश्न को पढ़ते हैं, फिर उसके बारे में थोड़ा सा सोचते हैं, तो एक प्रश्न लिखने में आपको 7-7.5 मिनट लगते हैं और 200 शब्दों में आपको लिखना होता है। तो आपको वो चैलेंज भी ध्यान में रखना है। तो अब आप देखिए कि क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं। शुरू करने की दिक्कत आ रही है, कैसे शुरू करूं, इसके बाद दिक्कत आ रही कि इनमें कौन कौन से पॉइंट्स मैं शामिल करूं, वो दिक्कत आ रही है। और जब आप सोच रहे हैं कि कौन कौन से पॉइंट्स शामिल करूं, तो पॉइंट्स सोचने में भी दिक्कत आ रही, कुछ चीजें भूल रहे हैं आप, कुछ चीजों में द्वंद्व मचा हुआ है कि इसको लूं या इसको नहीं लूं, कुछ चीजें आधे अधूरे तरीके से याद आ रही हैं। और ये जितने भी चैलेंजेस आप महसूस कर रहे हैं आंसर राइटिंग के, प्लीज नोट इट डाउन, आप उन्हें लिखिए, पॉइंट्स लिखते चले जाइए। इसके बाद फिर आप खत्म कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं आंसर को उस तरीके से। पहला चैलेंज तो आपको यही आएगा कि प्रश्न समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। इसके बाद फिर आप देखिए कि आपने कितना समय लिया लिखने में, क्या आप जो निर्धारित 7.5-8 मिनट का समय आपको मिलेगा, आप उस क्वेश्चन का आंसर अच्छे तरीके से दे पा रहे हैं। कुछ शब्दों को याद करने में आपको दिक्कत आएगी, भाषा सही तरीके से आप लिख पा रहे हैं या नहीं लिख पा रहे हैं, किस तरीके से आप अपना बैलेंस बनाए रखते हैं, व्यूज जो आप दे रहे हैं वो कितने तर्कपूर्ण है, तर्कपूर्ण तरीके से लिख पा रहे हैं कि नहीं लिख पा रहे हैं, इन सारी चीजों की डिटेल्स आपको नोट कर लेनी चाहिए। और जब एक बार आप लिख लेते हैं, इसके बाद फिर आप अपने उस लिखे हुए उत्तर को जांचिए, कौन कौन सी चीजें छूट गई, कौन कौन सी चीजें आप रिपीट कर रहे हैं, दोबारा लिख रहे हैं, तिबारा लिख रहे हैं, कौन कौन सी चीजें आपने लिखी, लिखते समय तो आपको लग रहा था कि ये सही है, लेकिन पता लगा लिखने के बाद जब आप चेक कर रहे हैं तो नहीं, ये तो फैक्ट ही गलत है। फिर आप देखिए कि आपने जो उत्तर लिखा है, आप अपने ही लिखे गए उत्तर से खुद को कितना संतुष्ट पा रहे हैं, और क्या आप इस उत्तर के बदले में 1 घंटे बाद 2 घंटे के बाद दूसरा और अच्छा उत्तर लिख सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि लिख सकता हूं तो फिर आप उसे लिखिए, लिखने की कोशिश कीजिए, देखिए लिख पाते हैं या नहीं लिख पाते हैं। मित्रों, इस तरीके से आंसर राइटिंग के समय जो चैलेंजेस आपको दिखाई दिए, जिनको आपने महसूस किया, जिनको आपने फेस किया, जब आप उनकी लिस्ट बनाएंगे तो इनफैक्ट वे सारे चैलेंजेस ही यूपीएससी की प्रिपरेशन के चैलेंजेस हैं, रियल चैलेंजेस वही हैं। अब सवाल ये होगा कि ये चैलेंजेस की लिस्ट आपकी बन गई है तो अब इनका समाधान क्या है। जब आप एक बार चुनौतियों को पहचान लेते हैं तो याद रखिए तभी फिर समाधान की शुरुआत होती है कि मैं अब इनका हल ढूंढूं कहां से। तब आप जब जो आपको गाइड कर रहे हैं, जब आपको निशांत जैन जैसे व्यक्ति मिलेंगे, तब आप उनसे अब इनके समाधान पूछेंगे। आप लिखते समय, आंसर लिखते समय कभी भी इस चुनौती को फेस नहीं करेंगे कि मैंने 5 घंटा की पढ़ाई की, अगर 6 घंटे पढ़ा होता तो मेरी ये प्रॉब्लम नहीं आती, अगर मैंने वो किताब पढ़ ली होती तो मेरी ये प्रॉब्लम नहीं आती। और अगर आपको महसूस होता है कि नहीं, इस तरह की भी समस्याएं मैं फेस कर रहा हूं, तो आप उसे भी लिख लीजिए, आएगी नहीं। तो दोस्तों, पहली बात तो यह है कि आप अपनी चुनौतियों को आइडेंटिफाई कीजिए, और ये जो चुनौतियां होंगी ये सबके लिए अलग अलग होंगी। और एक बार जब आप अपनी चुनौतियों को पहचान लेते हैं तो फिर उनका मुकाबला करने के हिसाब से फिर आपको अपनी तैयारी करनी होगी। याद रखिए, सिविल सर्विस की पढ़ाई नहीं होती है, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी होती है। पढ़ाई करने में और तैयारी करने में फर्क है। यदि इस फर्क को आप समझ लेंगे तो मुझे लगता है व्यक्तिगत तौर पर कि आप अपनी प्रिपरेशन को बहुत सही दिशा दे सकेंगे। तो मित्रों, आज के मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। जहां तक न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग का सवाल है वो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, आप लोग अपने ढंग से देख लेंगे। ईमेल लिखने वाले मित्रों को धन्यवाद देता हूं। उन्हीं में से कुछ साथियों के नाम हैं: रेखा द्रविड़ फिरोजपुर पंजाब से, पूजा गोस्वामी हापुड़ उत्तर प्रदेश से, सोनी गंगवार, सचिन कुमार, कमलेश कुमार और गोविंद सिर से। आप सबका भी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।